यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्।
और इस तरह से फिर 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन कराते हैं, भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा निवेदन और दिव्य चक्षु की प्राप्ति की अर्जी उसकी होती है। 9वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक विश्व स्वरूप का विवरण और महिमा बताई गई है। 23वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक अर्जुन की व्याकुल मनोदशा दर्शाई है। 25वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक महाकाल स्वरूप और निमित्त भाव के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी है। 35वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक अर्जुन का समर्पण भाव और क्षमा याचना और 45वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक अनन्य भाव के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस बात को और ज्यादा स्पष्ट किया। फिर अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया उससे मेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है, और इसलिए यदि बहुत कितना विनम्रता से वो समर्पित होकर के कहते हैं, और इसलिए यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। भावार्थ ये है कि हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर समर्थ बनाता है, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है। जितना व्यक्ति का अनन्य भाव होता है उतना परमात्मा द्वारा वो दिव्य चक्षु जिसे सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता मिलती है। और इस तरह से अब संजय बताता है कि अर्जुन ने क्या देखा। तो संजय ने अपने दिव्य चक्षु से देखे, क्योंकि दिव्य चक्षु का वरदान संजय को भी प्राप्त था। तो संजय ने अपने दिव्य चक्षु से देखे स्वरूप का वर्णन किया। क्या किया कि आकाश में एक साथ धृतराष्ट्र को वर्णन करके सुनाता है कि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय होने से जितना प्रकाश होता है वो उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। इतना असीम प्रकाश था। और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। ये दिव्य स्वरूप जो कहा कि सूर्य सभी प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान, लेकिन वो तेज चुभने वाला नहीं, नक्षत्रों में चंद्रमा के समान। इस तरह से भगवान ने जो अपने 21 श्रेणी का सौंदर्य का वर्णन किया जिसमें सर्वोच्च स्थिति को प्रकट किया, वो स्वरूप संजय भी अपनी दृष्टि से देखते हुए और ये देखता है कि कैसे अर्जुन झुक जाता है और प्रणाम करता है उस दिव्य स्वरूप को। और उसके बाद कहा दूसरा स्वरूप देखता है, वो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप परमात्मा ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। और उसके बाद सारे देवताओं और कमल आसन पर ब्रह्मा जी एवं शंकर को देख रहे हैं, विराट रूप दिखा। अब ये विराट रूप किसका है? ये परमात्मा का नहीं है, ये श्री कृष्ण का है। जिस तन में उन्होंने अवतरण किया था, जिस तन को माध्यम बनाया था यह गीता का ज्ञान सुनाने के लिए, उसका भी स्वरूप का दर्शन कराता है कि परमात्मा कौन और ये कौन, श्री कृष्ण कौन है और वो कौन है। तो इसलिए कहा कि सारे देवताओं और कमल आसन पर ब्रह्मा जी एवं शंकर को देख रहे हैं। आप आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त है, यानी श्री कृष्ण ने इस संसार में समय प्रति समय विभिन्न स्वरूप से जन्म लिया है। आदि मध्य अंत में समय प्रति समय उसने जन्म लिया, लेकिन अनंत सामर्थ्य युक्त स्वरूप में जन्म लिया और शंख चक्र गदा पद्म युक्त सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप को अपनी बुद्धि से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। आप इस जगत के परम आश्रय, आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। यानी श्री कृष्ण समय प्रति समय पुनः जन्म लेकर के संसार में विभिन्न कार्य अर्थ जन्म लेता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार पहले कराया कि वो असीम स्वरूप कौन सा है। इसीलिए भगवान को कहते ही है करण करावन हार। वो किसके द्वारा कराता है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, जो आदि मध्य अंत तीनों समय में अपने अनंत सामर्थ्य से युक्त होता है। यानी भगवान उसी का नाम है, परमात्मा उसी का नाम है जो ये तीनों को भी इतना सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और सामर्थ्य प्रदान करते हुए संसार के अंदर वो अपने स्वरूप को विशेष रूप से रच कर करके और इस संसार में शाश्वत धर्म की रक्षा करने हेतु ऐसे दिव्य स्वरूप में आते हैं, लेकिन वो मनुष्य पहचान नहीं पाते हैं। फिर अर्जुन कहता है इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो? वो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप जो देखा, तो कहा इतना प्रकाशमान उग्र स्वरूप जो है वो धारण करने वाले आप कौन हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन है। यानी जो विराट रूप दिखाया वो इतना दिव्य स्वरूप और उग्र स्वरूप था। एक मुंह से सारी आत्माएं ऊपर जा रही है, दूसरे मुंह से आत्माएं कुछ देव स्वरूप में आत्माएं नीचे उतर रही है। तो जो आत्माएं एक मुख से ऊपर जा रही थी जैसे खींचे चले जा रहे थे, तो कहा ये उग्र रूप धारण करने वाला आप कौन हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप आदि पुरुष कौन हो। मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। तो भगवान उवाच, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं, इसलिए तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनते हो। यानी परमात्मा को ये संसार परिवर्तन करने में देर नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो कोई जादू की छड़ी घुमा के काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए निमित्त इंसान को बनाते हैं। निमित्त भाव को जागृत करते हुए हमें अपना कर्तव्य करना है, और इसलिए उसको आदेश देते तुम उठो खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य करो, यश को प्राप्त करो। इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य, इसलिए कहा ना कि परमात्मा कालों का भी काल महाकाल है। तो इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य उन समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। इस दुनिया के अंदर जो इस वक्त में इतनी नकारात्मक शक्तियां बढ़ती जा रही है, ये एक एक व्यक्ति के अंदर की जो नकारात्मक भावनाएं हैं, विकृतियां हैं, ये असुरों से भी तेज है। इसीलिए भगवान जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए, अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितनी ही अधिक क्यों न हो, लोकक्षयकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है। भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव ही है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा द्वारा नए विश्व की स्थापना का कर्तव्य, विष्णु द्वारा वो नई सृष्टि का सत्युगी दुनिया का पालना का कर्तव्य, लेकिन कलियुग की विकृत सृष्टि का महाविनाश का कार्य शंकर के द्वारा कराते हैं। और ये लोक संहारकारी कार्य इसीलिए अब दुनिया के अंदर देखते हैं कि अभी होलसेल में मौत का प्रोग्राम आरंभ हो गया है। सभी आत्माओं को ऊपर जाना है, अब समय बदल रहा है, अब सत्युग का आने का समय हो चुका जा रहा है। इसलिए ये संसार की परिवर्तन की गति तीव्र कर दिया है। और ये लोक संहारकारी भाव का मतलब है भगवान का लोक कल्याणकारी भाव। इसलिए भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि पुनः निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल ही समर्थ है। यानी संसार के अंदर समय में इतनी शक्ति है परिवर्तन करने की। इसलिए सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि वह निर्भय होकर के अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे। भगवान हम सब अर्जुनों को ये उपदेश देते हैं कि निर्भय होकर के अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे। पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता का केवल साथ ही दे रहा है, तो हमें भी सफलता का साथ देना है। इस तरह का अर्जुन हमें बनने की प्रेरणा भगवान ने दी। फिर अर्जुन पूछता है, वे सिद्ध संग आपको नमस्कार कैसे नहीं करे, क्योंकि आप तो सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता है। इसलिए कहा ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आदि कर्ता परमात्मा है। अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों का ईश्वर है। परमात्मा एक ही है जो सभी देवी देवताओं का भी ईश्वर है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से समस्त देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप इस चराचर जगत के पिता पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु है जिसकी कोई प्रतिमा नहीं। ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है। इसलिए हे भगवान, जैसा पिता पुत्र को, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। यहाँ अर्जुन को संपूर्ण रियलाइजेशन हो गया कि परमात्मा का असीम ऐश्वर्य क्या है और श्री कृष्ण का ऐश्वर्य क्या है। देवी देवताओं के अस्तित्व का भी ज्ञान हो गया। और तब वो कहता है कि अब तक मैंने जो अज्ञानता के वश आपको सवाल किए, जो भी आपके सामने बातें की अज्ञानता के कारण, तो आप जैसे एक पिता अपने पुत्र के दोषों को माफ कर देता है, अपराधों को माफ कर देता है, एक मित्र के बातों को ध्यान पे नहीं लेता, माफ कर देता है, और एक प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे आप भी। यानी भावार्थ ये है कि सर्व संबंध हमारे परमात्मा के साथ है, चाहे वो प्रियतम है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो पिता है। आज सवेरे इसीलिए अलग अलग स्वरूप से कैसे ईश्वर को सर्व संबंधों से याद किया जा सकता है, ये बात को स्पष्ट किया था। तो वैसे अर्जुन अपनी गलतियों का एहसास करता है कि सचमुच मैंने कैसे कैसे सवाल पूछे आपको, किस किस प्रकार से बातें की आपके साथ, क्योंकि मैं आपके वो दिव्य स्वरूप को जान नहीं पाया, तो इसीलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, मेरा यह रूप देखने को मिलना यह अति दुर्लभ है। जिसको तुमने देखा है, देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप को देखें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भगवान ने की गीता के अंदर, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मैं देखा नहीं जा सकता। भगवान के दिव्य स्वरूप को जानने के लिए हृदय को पवित्र करना होता है, और जितनी पवित्र भावनाओं को हम, अनन्य भावों को जागृत करते, जितना ईश्वर से प्रेम हमारा होता, अर्जुन का प्रेम था, इसीलिए भगवान ने उसको अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। बाकी रोज वेद पढ़ता रहे, तप करता रहे, दान करता रहे, यज्ञ करता रहे, उससे कोई भगवान के दिव्य स्वरूप को देख नहीं सकता। बहुत स्पष्ट शब्द में भगवान ने 11वें अध्याय में ये बात कह दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि भगवान ने कितने स्पष्ट शब्द में ये बात कही है। और इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि अंत में भगवान ईश्वर रत्न को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निराधारित यज्ञ कर्म करता है, जो निर्धारित यज्ञ कर्म है उसको करता रहता है, दूसरी बात जिसका परम लक्ष्य ईश्वर अनुभव करना ही है, परमात्मा को अनुभव करने के लिए जो ईश्वर अर्पण बुद्धि हो और निर्धारित यज्ञ कर्म करता हो, जिसका परम लक्ष्य ईश्वर अनुभव करना ही हो, जो अनन्य भक्ति भाव रखता हो, जो संग और आसक्ति से रहित हो, जो संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव से रहित है, वो ईश्वर के दिव्य स्वरूप को देख सकता है। रोज वेद पढ़ते रहे, रोज उपनिषद पढ़ते रहे, यज्ञ तप करते रहे, सब कुछ करने के बाद अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं, समर्पण भाव नहीं, आसक्ति दिल के अंदर भरी हुई हो, संग दोष में लिपटे हुए हो और हरेक के प्रति प्रेम भाव न हो, वैर रहित भावना न हो, अंदर में वैर द्वेष भरा हुआ हो और वो चाहे कि मैं ईश्वर का दर्शन करूं, कर सकते हैं क्या? ये तो आज की दुनिया के अंदर कॉमन व्यक्ति भी समझ सकते हैं, और कई बार वो कहते भी है कि ये बगला भगत है, बाहर से तो बहुत पूजा पाठ आदि करता है लेकिन अंदर में देखो, जब देखो तो उसके मुंह के ऊपर ऐसी उसकी वाणी होती है जैसे छुरी चलती है। और इसीलिए कई बार कई लोगों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो कम हो जाती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ अपनी प्राप्ति का, अनुभूति का रहस्य स्पष्ट करते हैं, अर्थात कि अर्जुन, संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उसी समय परिपंथी राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रुओं के रूप में प्रत्यक्ष ही है, उनका पार पाना ही युद्ध है। मना इसी के सामने युद्ध करने की प्रेरणा भगवान ने दी।